लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरज घर के प्रांगण में रविवार 4 अक्टूबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेली ए सोरेल्ले, बोंजोर्नो। नेल वांजेलो दी ओजी Gesù, prevedendo la sua passione e morte, racconta la parabola dei vignaioli omicidi.
Atti priye bhaiyo em behno suprabhat. आज के सुसमाचार पाठ में यीशु अपने दुख भोग और मृत्यु का पूर्वाभास करते हुए हिंसक असामियों का दृष्टांत सुनाते हैं, ताकि महायाजकों और जनता के नेताओं को चेतावनी दे सकें जो गलत रास्ते पर चल रहे थे। निश्चय ही वे लोग उनके प्रति बुरी भावना रखते थे और उन्हें खत्म करने का रास्ता खोज रहे थे। दृष्टांत में एक मालिक के बारे बतलाया गया है जो अपनी दागबारी की बहुत देखभाल करने के बाद उसे पट्टे पर देकर परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूलने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उनके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थर से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को भेजा कि वे मेरे बेटे का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, वह तो अधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दागबारी के बाहर निकालकर मार डाला। संत पापा ने कहा, दागबारी का दृश्य स्पष्ट है, यह उन लोगों का प्रतीक है जिन्हें प्रभु ने चुना है और बड़ी सावधानी से उनकी देखभाल की है। सेवक जो मालिक के द्वारा भेजे गए हैं, वे नबी हैं, ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, जबकि बेटा यीशु का प्रतीक है। जिस तरह नबियों का बहिष्कार किया गया, उसी तरह यीशु का भी बहिष्कार किया गया और उन्हें मार डाला गया। कहानी के अंत में यीशु जनता के नेताओं से सवाल करते हैं, जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? तब दृष्टांत के तर्क के अनुसार वे अपने ही दंड को सामने रखते हुए कहते हैं, स्वामी उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपने दागबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। इस कठोर दृष्टांत के द्वारा यीशु अपने वार्ताकारों को उनकी जिम्मेदारियों के साथ सामना करते हैं और इससे वे बिल्कुल स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करते हैं। संत पापा ने कहा,
Ma non pensiamo che questo ammonimento valga solo per quelli che rifiutarono Gesù in quel tempo.
किंतु हम ना सोचे कि यह चेतावनी सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जिन्होंने यीशु के समय में इनकार किया था। यह सभी समय के लिए है और यह हमारे समय के लिए भी है। आज भी यीशु अपनी दागबारी से फल की प्रतीक्षा करते हैं, उन लोगों से जिन्हें उसमें काम करने के लिए भेजा गया है। हम सभी से, हर युग में जिन्हें अधिकार है, कोई भी अधिकार, कलीसिया में ईश प्रजा के बीच वे ईश्वर की अपेक्षा अपने फायदे के लिए काम करने के प्रलोभन में पड़ सकते हैं। यीशु कहते हैं कि सच्चा अधिकार सेवा में प्रकट होता है, सेवा करने में, ना कि शोषण करने में, क्योंकि दाखबारी प्रभु का है, हमारा नहीं। अधिकार एक सेवा है और इसका प्रयोग सभी की अच्छाई के लिए एवं सुसमाचार प्रचार के लिए किया जाना चाहिए। यह देखना बुरा है कि कलीसिया में कुछ लोग जिन्हें अधिकार मिला है वे अपने फायदे की खोज करते हैं। दूसरे पाठ पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, संत पौलुस आज की धर्म विधि के दूसरे पाठ में बतलाते हैं कि हम किस तरह प्रभु की दागबारी में अच्छे सेवक बन सकते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा, आदरणीय, न्याय संगत, निर्दोष, प्रीतिकार, मनोहर, उत्तम और प्रशंसनीय आदि सद्गुण हमारे दैनिक जीवन के प्रयासों में शामिल हों। यह एक अधिकारी का मनोभाव है और हम सभी का भी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने तरीके से छोटे रूप में अधिकारी है। इस तरह हम एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करेंगे जो पौत्रता का अधिक फल उत्पन्न करेगी। इस तरह हम महिमा प्रकट करेंगे पिता की, जो हमें असीम कोमलता से प्यार करते हैं, पुत्र की, जो हमें मुक्ति प्रदान करते, और आत्मा की, जो हमारे हृदय को खोलते एवं हमें पूर्ण अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तब संत पापा ने अक्टूबर माह में रोजनी माला विनती करने का प्रोत्साहन देते हुए कहा,
En el mes de octubre rinnoviamo l'impegno di pregare il Santo Rosario.
हम इस समय अति पौत्र मरियम की ओर नजर लगाएं, प्रार्थना के लिए पोम्पेई के तीर्थस्थल पर एकत्रित विश्वासियों के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़कर इस अक्टूबर माह में रोजरी माला विनती को फिर से करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen. देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, कल मैं असीसी गया था नए विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती पर हस्ताक्षर करने के लिए, जो भाईचारा एवं सामाजिक मित्रता पर आधारित है। मैंने उसे संत फ्रांसिस की कब्र पर ईश्वर को समर्पित किया, जिन्होंने मुझे पहले के लौदातो सी के समान प्रेरित किया है। समय के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखला रहे हैं कि मानव भाईचारा एवं सृष्टि की देखभाल, समग्र विकास एवं शांति की ओर बढ़ने के एकमात्र रास्ता का निर्माण करते हैं, जिसको संत पापा जॉन 23वें, संत पापा पॉल 6वें और संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने पहले ही इंगित किया था। तत्पश्चात संत पापा ने अपने नए विश्व पत्र को प्रस्तुत करते हुए कहा, आज आप जो इस प्रांगण में अथवा प्रांगण के बाहर हैं, मुझे नए विश्व पत्र की भेंट करते हुए खुशी हो रही है, जो ओसर्वातोरे रोमानो के असाधारण संस्करण में प्रकाशित है। इस संस्करण के साथ ओसर्वातोरे रोमानो दैनिक समाचार पत्र में शुरू होगा। संत फ्रांसिस कलीसिया सभी विश्वासियों और सभी लोगों के बीच भाईचारा की यात्रा में साथ दे। संत पापा ने सृष्टि के समय की याद करते हुए कहा,
Conclude il tempo del creato, iniziato il primo settembre scorso, nel quale abbiamo celebrato un giubileo per la terra.
आज सृष्टि के समय का समापन हो रहा है, जिसकी शुरुआत 1 सितंबर को हुई थी, जिसमें हमने विभिन्न कलीसियाओं के क्रिस्तियों के साथ धरती के लिए जयंती मनाया। संत पापा ने विश्व कार्तिक जलवायु आंदोलन के प्रतिनिधियों, लौदातो सी दलों एवं समग्र पारिस्थितिकी के रास्ते पर संलग्न विभिन्न संगठनों का अभिवादन किया। उन्होंने उन सभी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जिनको सृष्टि के समय के अंतिम दिन में संपन्न किया गया, खासकर पोर्ट डेल्टा क्षेत्र में। 4 अक्टूबर को 100 साल पहले स्टेला मारिस ओपेरा का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, ताकि समुद्र में काम करने वाले लोगों की मदद की जा सके। संत पापा ने कहा, इस महत्वपूर्ण वर्षगांठ पर मैं समुद्र की प्रेरिता से जुड़े पुरोहितों एवं स्वयं सेवकों को प्रोत्साहन देता हूं कि वे बंदरगाहों में समुद्र कर्मियों, मछुआरों और उनके परिवारों के बीच आनंद के साथ कलीसिया का साक्ष्य दें। धन्य डॉन ओलिंटो मारेला की रविवार को धन्य घोषणा हुई, जो क्योजा धर्म प्रांत के पुरोहित थे। संत पापा ने उनकी याद करते हुए कहा, वे ख्रिस्त के हृदय के समान चरवाहे, गरीब के पिता एवं दुर्बल के रक्षक थे। उनका असाधारण साक्ष्य अनेक पुरोहितों के लिए उदाहरण बने जो ईश्वर के दीन एवं सासी सेवक बनने के लिए बुलाए गए हैं। तब संत पापा ने ताली बजाकर नए धन्या को सम्मानित किया। तत्पश्चात संत पापा ने सभी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए कहा, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ जो रोम एवं विभिन्न देशों से तीर्थ यात्रा पर आए हैं। उन्होंने परिवारों, पल्ली दलों, संगठनों एवं विश्वासियों तथा विशेष रूप से वैटिकन स्विस गार्ड के परिवार वालों का अभिवादन किया जो नए स्विस गार्ड बनने के समारोह में भाग लेने आए हुए थे। संत पापा ने स्विस गार्ड दल को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि स्विस गार्ड अपने जीवन में कलीसिया उसके सर्वोच्च अधिकारी की सेवा की छोटी यात्रा तय करते हैं। ये साहसी युवक 2, 3, 4 या उससे अधिक सालों के लिए यहाँ आते हैं। और अंत में संत पापा ने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
आचल तुम्हारा उमा आशीष देता सदा से, आचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही। आचल तुम्हारा
रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 5 अक्टूबर को वाटिकन के संत पापा पॉल छठे सभागार में कासा डिपोसिटी ए प्रेस्टिति नकद जमा और ऋण संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिवादन किया। संत पापा ने संस्थान के अध्यक्ष को उनके परिचय भाषण के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, यह बैठक आपकी संस्था के जन्म के 170 साल बाद हो रही है। राष्ट्र की राजनीतिक एकता के बाद कासा पिएमोंते के रूप में स्थापित इस संस्था का नाम बदलकर कासा डिपोसिटी ए प्रेस्टिति हो गया। तब से निरंतर निवेश, आधुनिकीकरण, स्थानीय अधिकारियों के लिए समर्थन, पेशेवर प्रशिक्षण और उत्पादकता के लिए समर्थन की आवश्यकता में देश के विकास और जरूरतों को आपके संस्थान के कार्यों में जोड़ा गया। देश के विकास हेतु आज भी आपकी उदार प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। आइए हम गंभीर महामारी द्वारा उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर विचार करें। हम बहुत महत्वपूर्ण नतीजों के साथ घटनाओं के बारे में सोचें, जैसे कि उत्पादन के कुछ रूपों में गिरावट, जिन्हें नवीनीकरण या ठोस परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ वैश्विक संस्थाओं के हाथों में आदान प्रदान और व्यवसायों को केंद्रित करने के जोखिम के साथ माल को खरीदे और बेचे जाने वाले परिवर्तनों के बारे में सोचें। इससे प्रदेशों और स्थानीय व्यावसायिक कौशल की खासियत में गिरावट हो सकती है। पापा ने कहा, कलीसिया का सामाजिक सिद्धांत इस विचार से सहमत है जिसमें कई निवेशक संसाधनों के उचित पारिश्रमिक की उम्मीद करते हैं और उन्हें उन पहलों के वित्त पोषण के लिए देते हैं जो सामाजिक और सामूहिक पदोन्नति का लक्ष्य रखते हैं। क्रिश्चियन विचार लाभ की संभावना के सिद्धांत के विपरीत नहीं है, बल्कि यह किसी भी कीमत पर उस लाभ के विपरीत है जो मनुष्य को भूल जाता है, उसे गुलाम बना देता है, उसे चीजों के बीच एक चीज की तरह आंकता है। व्यवसाय प्रबंधन को हमेशा सभी से निष्पक्ष और स्पष्ट आचरण की आवश्यकता होती है, जिससे भ्रष्टाचार को जगह ना मिले। संत पापा ने उनके कामों की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी संस्था व्यक्ति, परिवारों और पूरे समाज के विकास के लिए एक असली ताकत के रूप में वास्तविक अर्थव्यवस्था की पुनरावृत्ति के पक्ष में एकजुटता की संवेदनशीलता का प्रमाण देती है। इसके अलावा इस तरह से एक राष्ट्र की क्रमिक यात्रा के साथ और इस दुनिया के सभी सामानों को बढ़ाने और अधिक सुलभ बनाने के प्रयास के साथ आम भलाई करना संभव है। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने उन्हें उदारता पूर्वक अपने कार्यों को जारी रखने हेतु प्रोत्साहित किया। संत पापा ने कहा, पवित्र आत्मा की सहायता आपके साथ हो और आपको न्याय और शांति प्रदान करे। कासा डिपोसिटी ए प्रेस्टीति के सभी सदस्यों और उनके परिवारों के सदस्यों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आशीर्वाद देने के बाद संत पापा ने अपने लिए प्रार्थना करने की मांग करते हुए उनसे विदा ली। और संत पापा फ्रांसिस का तीसरा विश्व पत्र फ्रातेली तुत्ती, हम सब भाई बहने हैं का प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया गया। विश्व पत्र के संदर्भ में संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 5 अक्टूबर को 2 ट्वीट लिखा। संत पापा ने पहले ट्वीट में लिखा, अपने कार्यों द्वारा भले समारी ने यह दिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व दूसरे के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जीवन बस यूं ही गुजारने का समय नहीं है, जीवन पारस्परिक विचार विमर्श करने का समय है। संत पापा ने दूसरे ट्वीट में लिखा, हम दूसरों के दुख के प्रति उदासीन नहीं हो सकते, हम किसी को भी समाज से बाहर तिरस्कृत जीवन जीने नहीं दे सकते, इसके बजाय हमें अपने अलग थलग अलगाव से उभरने और मानव पीड़ा को कम करने हेतु खुद को चुनौती देना चाहिए, यही गरिमा है। हैशटैग फ्रातेली तुत्ती। और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विभिन्न लोगों ने रविवार को वाटिकन के नए धर्म सभा हॉल में संत पापा फ्रांसिस के नए विश्व पत्र फ्रातेली तुत्ती को प्रस्तुत किया। पैनल में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन, अंतरधार्मिक वार्ता हेतु बनी परम धर्म पीठीय समिति के प्रीफेक्ट कार्डिनल मिगुएल आयुसो, मानव भाईचारे के लिए बनी उच्च समिति के महासचिव न्यायाधीश मोहम्मद महमूद अब्देल सलाम, कैथोलिक समाज विचार और अभ्यास के प्रोफेसर एन्ना रायलेंस, डरहम यूके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और संत इजिदियो समुदाय के संस्थापक एंड्रिया रिकार्दी थे। कार्डिनल पारोलिन ने प्रस्तुति के दौरान कहा, भाईचारे की संस्कृति के माध्यम से संत पापा फ्रांसिस हर एक को प्यार करने का आह्वान करते हैं। भाईचारा एक प्रवृत्ति या एक फैशन नहीं है, लेकिन ठोस कृतियों का परिणाम है। नया विश्व पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू होने वाले भाईचारे की संस्कृति को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि अगर इस संस्कृति को लागू किया जाता है तो यह देशों के बीच एकीकरण बल, आर्थिक विकास और सहयोग पर नियमों की प्रधानता के अनुस्मारक के रूप में काम करेगा। अंतरधार्मिक वार्ता हेतु बनी परम धर्म पीठीय समिति के प्रीफेक्ट कार्डिनल मिगुएल ने कहा, मैं संत पापा फ्रांसिस को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने परमाध्यक्षीय काल की शुरुआत से ही अंतरधार्मिक संवाद को प्रोत्साहन दिया है। अंतरधार्मिक संवाद वास्तव में संत पापा फ्रांसिस के चिंतन और कार्यों में है। वास्तव में जैसा कि फ्रातेली तुत्ती कहता है, सच्चे दिल से ईश्वर की तलाश करने का प्रयास हमें एक दूसरे को यात्रा करने वाले साथियों, सही मायने में भाइयों और बहनों के रूप में पहचानने में मदद करता है, बशर्ते कि यह कभी भी वैचारिक या आत्म सेवा के उद्देश्य से नीरस न हो। सम्मान और मित्रता को दो मौलिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हुए संत पापा फ्रांसिस ने एक और दरवाजा खोला है, ताकि भाईचारे का ऑक्सीजन विभिन्न धार्मिक परंपराओं के व्यक्तियों के बीच, विश्वासियों और गैर विश्वासियों के बीच और भली इच्छा वाले सभी व्यक्तियों के बीच संवाद में प्रवेश कर सके। जज मोहम्मद महमूद अब्देल सलाम ने कहा, जब मैंने भाईचारा और सामाजिक मित्रता पर इस विश्व पत्र को पढ़ा तो मैंने पूरी दुनिया में मानव भाईचारा के विषय पर एक परिष्कृत स्वाद, एक संवेदनशीलता और व्यक्त करने की क्षमता को पहचाना। यह कलह की दुनिया में सहमति करने की अपील है। इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।